बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ा जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाक़ों पर सहयोनी हुकूमत के ताज़ा हमलों के बारे में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फ़रमाइए अंदाज़ जहाँ। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इतवार की रात से गज़ा पर सहयोनी हुकूमत के हमलों में तेज़ी आई और पीर की रात सहयोनी काबीना ने गज़ा पर वसी तर हमलों की मंजूरी दी, जिसके बाद सहयोनी फ़ौजियों के चौतरफा हमलों का आगाज़ हो गया। आज भी दिन भर सहयोनी जंगी तैयारों ने थोड़े थोड़े वक्फे से गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों पर तसलसल के साथ बमबारी की, जिसमें आखिरी इत्तला आने तक कम से कम 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अलबत्ता बाज़ रिपोर्टों में शहीद होने वालों की तादाद 11 बताई गई है। इसी तरह एतवार की रात से अब तक अगर देखा जाए तो सहयोनी फ़ौजियों के हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 24 हो चुकी है। सहयोनी हुकूमत की जारहियत का नया सिलसिला, 3 सहयोनी आबादकारों के अगवा और कत्ल के मशकूक वाक़े के बहाने शुरू हुआ, जबकि तमाम फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने इस वारदात में फ़लस्तीनियों के मुलव्वस होने की तरदीद की है। इसके बावजूद गासिब सहयोनी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वहशियाना जराइम के इर्तिकाब के साथ ही गज़ा पर हमागीर हमले का आगाज़ कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम गज़ा पर सहयोनी हुकूमत के ताज़ा हमलों के अहदाफ के बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में, जबकि आलम इस्लाम इराक़ के बाद शहरों पर तकफीरी दहशतगर्द ग्रोह दाइश के कब्ज़े, उसके वहशियाना जराइम और उसके सरगना अबू बकर अल बगदादी की खिलाफत के ऐलान की शक्ल में एक नई साजिश से दोचार है। सहयोनी हुकूमत गज़ा पर हमला करके क्या हासिल करना चाहती है? हमारे आज के प्रोग्राम में यहाँ तेहरान स्टूडियो से हिस्सा लेंगे आलम इस्लाम और मशरक़ वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर राशिद अब्बास। दिल्ली स्टूडियो से प्रोग्राम में शिरकत करेंगे हिंदुस्तान के मारूफ दानिश्वर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के प्रोफेसर डॉक्टर अर्शी खान, और लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार बैरिस्टर यूसुफ अख्तर को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
तीन सहयोनी नौजवानों के लापता होने के वाक़े के बाद इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और उनकी गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। मस्कूरा तीनों सहयोनी नौजवान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आम शहरी नहीं बल्कि फ़ौजी थे, 12 जून को लापता हो गए थे और 30 जून को उनकी लाशें ग़र्ब उर्दन के शहर अलखलील के नवाही इलाके से बरामद हुई थी। इसराइल ने पहले ही दिन फ़लस्तीनी तंजीमों और ख़ासतौर से हमास को गुमशुदगी के इस वाक़े का ज़िम्मेदार करार दिया था, जिसकी हमास ने सख्ती साथ तर्दीद की थी। मस्कूरा तीनों सहयोनियों की गुमशुदगी और लाशें मिलने के बाद इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ ऐसे वहशियाना इकदाम का सिलसिला शुरू कर दिया है जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तीन सहयोनियों के अगवा और कत्ल को बहाना बनाकर इसराइल ने अब तक मुतअद्दिद फलस्तीनियों को शहीद और 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि गजा पर शुरू होने वाली बमबारी का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। इसराइल की बमबारी में अब तक 13 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों के जख्मी होने की खबर है। इसराइल के जंगी तैयारों ने पीर और मंगल की दरमियानी रात गज़ा के तकरीबन सभी मकामात पर बमबारी की है, जबकि इसराइली फौजी दस्ते भी फलस्तीनी इलाकों में ज़मीनी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ ने फ़लस्तीनियों का सबसे ज़्यादा मुश्तइल किया है और उन्होंने पूरे फ़लस्तीन में मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, वो सहयोनियों के हाथों मोहम्मद खुज़ैर नामी फ़लस्तीनी नौजवान की शहादत है। 16 साल मोहम्मद खुज़ैर को तीन सहयोनियों की लाशें बरामद होने के वाक़े के बाद अगवा किया गया था और चंद घंटे के बाद एक इलाके से उसकी लाश बरामद हुई। मशरक़ी बैतुलमक़दस के रहने वाले इस फ़लस्तीनी नौजवान को बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद अज़ां ज़िंदा जला दिया गया। इस वाक़े के महज एक दिन के बाद एक और फ़लस्तीनी नौजवान को सहयोनियों ने अगवा करने के बाद बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ पूरे मकबूजा फ़लस्तीन और आज़ाद फ़लस्तीनी इलाकों में एहतजाज की नई लहर शुरू हो गई। बेगुनाह फ़लस्तीनी आवाम के खिलाफ इसराइल के जारहाना इकदाम में शिद्दत एक ऐसे वक्त में आई है जब अरब दुनिया के अक्सर ममालिक अंदरूनी सतह पर इंतहाई हसास मसाइल में उलझे हुए हैं और सारी दुनिया की तवज्जो इराक़ और शाम में जारी वाक़ात पर मरकूज़ है। ایسے حالات میں اسرائیل کے دہشت گردانہ اقدامات اور جارحیت کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں ایک نئی تحریک انتفاضہ کے آغاز کے لیے ماحول پوری طرح سے سازگار دکھائی دے رہا ہے، اور تحریک جہاد اسلامی نے تمام فلسطینیوں سے اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل بھی کی ہے۔ تحریک مزاحمت کے جوانوں کے راکٹ حملوں نے صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور غزہ پر کوئی نئی جنگ مسلط کرنے کے بارے میں اسرائیلی حکام کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ صہیونی وزیراعظم کی کوشش ہے کہ موجودہ بحران کو کسی طور بھی ممکن ہو قابو کیا جائے، تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ مسلسل جنگ کا نقارہ بجا رہے ہیں۔ بیتونہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر خارجہ لیبرمین نے لیکوڈ پارٹی کی قیادت والی مخلوط حکومت سے علیحدگی کی دھمکی بھی دی ہے۔ ایسا صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی اور فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف اسرائیل کی دہشت گردی اور تشدد میں کمی نہیں آئی تو کسی بھی لمحہ ایک نئی تحریک انتفاضہ کے شعلے پورے مقبوضہ اور آزاد فلسطینی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو دوسری تحریک انتفاضہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ناظرین، غزہ پر صہیونی حکومت کی تازہ جارحیت کے سلسلے کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد عباس سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ راشد عباس صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت
شکریہ۔ صہیونی حکومت کا جو تازہ حملہ ہے، جس میں تازہ رپورٹ یہ ہے کہ منگل کو صرف اس کے ہوائی حملوں میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے، 7 فلسطینی خان یونس میں ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، اس میں سے صہیونی جنگی طیاروں نے بمباری کر دی، اس میں شہید ہوئے، یعنی وہ عام لوگ تھے جو مارے جا رہے تھے، کئی بچے ہیں، بہت سی عورتیں اس میں، زخمیوں کی تعداد کافی ہے۔ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے صہیونی حکومت ان حملوں سے، مقصد کیا ہے اس کا؟
دیکھیں جی، غاصب صہیونی حکومت کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو جو بھی اس کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے، جن لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ کام کیا ہے، سماجی بنیادوں پہ کام کیا ہے، ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ کام کیا ہے، ڈیموکریسی کے عنوان سے، جس نے بھی جو بھی کام کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس غاصب صہیونی حکومت کی جو ماہیت ہے وہ ظلم، ستم، تشدد، جبر، اس پہ استوار ہے۔ لہٰذا اس سے ہر چیز کی توقع ممکن ہے۔ یعنی آپ بچوں کی بات کرتے ہیں، آپ خواتین کی بات کرتے ہیں، آپ یعنی ابھی یہ تو وہ ہے نا، کم از کم آزاد تو ہیں نا، باہر پھر رہے ہیں۔ آپ جو ان صہیونی جیلوں کے اندر جو قیدی موجود ہیں، جو فلسطینی بیچارے موجود ہیں، جنہیں اس جرم میں کہ کہیں پہ کسی نے اگر کوئی ایک نعرہ لگا دیا اسرائیل کے خلاف، غاصب اسرائیل کے خلاف، اس اسرائیل کے خلاف، اس حکومت کے خلاف کہ جو ان کے گھر پہ قابض ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مقابلے کی بات ہے، ایک گھر پہ آ کے ایک ڈاکو نے قبضہ کر لیا ہے، اور اگر ایک بچہ، ایک خاتون، ایک نوجوان اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، فطری حق ہے اس کا، اس کا دفاعی حق ہے۔ دنیا کی کوئی قانون، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ اس سے یہ واپس نہیں لے سکتا۔ ایسے افراد پہ جن جیلوں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جس انداز سے تشدد ہو رہا ہے، جس انداز سے، یعنی ابھی جو آپ نے اشارہ کیا نا، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ کیا آپ نے رپورٹ میں بھی یہ باتیں سامنے آئیں، اصل شروع ہی وہاں سے ہوا ہے۔ یعنی جیلوں کے اندر اس وقت ایک اچھا خاصا احتجاج ہے، ایک پروٹیسٹ ہے کہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ اسی پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے فوری طور پہ شروع کیا گیا ہے۔ تو جس حکومت کی ماہیت، جس کی بنیاد، جس کی اساس ہی ظلم، جبر اور تشدد پہ ہو، اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ جس انداز سے عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے، جس انداز میں بچہ، اب وہ جو واقعہ ہے، اس نوجوان کا واقعہ کتنا تکلیف دہ واقعہ ہے، یعنی آج کی اس دنیا میں کہ جس کو کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس والے ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ہر جگہ پہ ان کی رپورٹیں، ایک نوجوان کو، 10-15 سال کا ایک نوجوان ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر ایک ایسی گیس بھری جاتی ہے کہ جس کو پھر آگ لگانے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے ہے اس 15 سالہ نوجوان کے بارے میں، یعنی حیران کن ہے۔ یعنی اس وقت انسان کو اس دور میں اس رپورٹ کو پڑھ کے شرمندہ ہونا چاہیے کہ انسان کے نام پہ، یہ انسانیت ہے، یعنی یہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں؟ یہ صہیونی حکومت کس انداز سے اپنے آپ کو ایک عوامی حکومت کی بات کرتی ہے، یا یہ کہتی ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی عوام کی بات بھی کرتے ہیں، آخر وہ بھی انسان ہے۔ اس انسانیت کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو یہ کون سا انسان، کون سی انسانیت کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک نوجوان کو پکڑیں، تشدد کا نشانہ بنائیں، اس کے پیٹ کے اندر گیس بھریں اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دیں؟ یعنی یہ صورتحال ہے۔ اب دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، زمین کے اندر کام کرنے والے کسانوں میں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، یہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی مثال بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ایسی حکومت ہے کہ جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس خطے کے اندر ان مظلوم فلسطینیوں کا خاتمہ کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں اب غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کتنے سالوں سے 17 لاکھ کی آبادی کو گویا جیل میں بند کیا گیا ہے, اور پھر آج کل تو خصوصاً رمضان کے ایام ہیں, اور رمضان کے ایام میں ان فلسطینیوں پہ غزہ کے اندر ان موجود لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جن میں آپ دیکھیں 2-3 دنوں کے اندر پے در پے حملے ہو رہے ہیں, فضائی حملے ہو رہے ہیں, طیارے آ رہے ہیں, ان کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو تازہ خبریں آ رہی ہیں کہ زمینی فورسز کو بھی باقاعدہ بارڈرز پہ تیار کر لیا گیا ہے, بڑی بڑی مشینریز, بڑی بڑی جنگی جو مشینریز ہیں وہ آ چکی ہیں بارڈرز کے اندر. اب اس خوف کی حالت میں, اس کیفیت میں ان محصور لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ انسانیت کے لیے ایک سوال ہے, یہ عالمی اداروں کے لیے ایک سوال ہے, وہ جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ جو اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم بردار کہتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ یعنی 2 دنوں سے مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو اس انداز سے اس کی مذمت کی گئی ہو, اس کو روکنے کے لیے کوئی عملی کوشش کی گئی ہو. ان کے ہاں اپنا اگر ان کا کوئی آدمی, میں معذرت کے ساتھ جملہ کہتا چلوں کہ غسل خانے کے اندر اگر صابن کی اس ٹکیا سے پھسل کے گر جائے تو اس ملک کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں. ان کا میڈیا چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو ہمارے بندے کے خلاف جو ہے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہوئی ہے, فلاں ہوا ہے, فلاں ہوا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, عام بےچارے خواتین, بچے, کسان زمین میں کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے گولی آئی, کہاں سے راکٹ آیا, وہ اس زمین کا, اس خاک کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی یہ واقع اس وقت جو صورتحال ہے اس کو جہاں پہ ہم عالمی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے, جہاں علاقائی مسئلے کے عنوان سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو انسانی بنیادوں پہ بھی دیکھیں کہ ان حالات میں کیا ہو رہا ہے فلسطینی مظلومین پہ. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اور یقین کریں کہ جیسے انتفاضہ اول شروع ہوا, جس طرح انتفاضہ دوم شروع ہوا, بعید نہیں ہے کہ اس موجودہ جو اس وقت جو تشدد کی لہر آئی ہوئی ہے, جس انداز سے اسرائیل جو ہے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھا رہا ہے, اس کے نتیجے میں ایک تیسرا جو ہے انتفاضہ آنے والا ہے, اور اس کے لیے اسرائیل کو تیار رہنا چاہیے. جو جس انداز سے خبریں فلسطینیوں کے اندر سے آ رہی ہیں, اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک لاوا جو ہے وہ بالکل اپنے اس آخری نتیجے پہ آ چکا ہے, وہ پھٹنے کے قریب ہے. اور یہ تیسرا انتفاضہ جس انداز سے حالات صورتحال سامنے آ رہی ہے, یہ اسرائیل کو لے ڈوبے گا, اور اسرائیل کے لیے یہ انتہائی سخت حالات پیدا کر دے گا. لہذا اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو جس انداز سے بھی ہو سکے, چاہے وہ کسی نام سے بھی ہو, اس ظلم سے روکنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, حکومتوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, عالمی اداروں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور بالخصوص عالم اسلام کو تو اس پہ ہرگز خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ سکوت تو اصلاً جرم ہے اس وقت جو ہے اس ظلم کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنا.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, جہاں بر صغیر کے ایک ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر ارشی خان صاحب موجود ہیں. خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب, غزہ تقریباً 7 سال سے محاصرے میں ہے, اور ان حالات میں صہیونی کابینہ نے پیر کی رات وسیع تر حملوں کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد چوطرفہ حملے شروع ہو چکے ہیں. منگل کی صبح سے اس وقت تک ہونے والے حملوں میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں, پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں. وہاں سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ اسپتالوں میں زخمیوں کے علاج معالجے کا سامان نہیں ہے. ایک طرف تو صہیونی حکومت کے حملے ہیں, دوسری طرف عالمی برادری کی خاموشی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ارشی خان صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو, جہاں بیرسٹر یوسف اختر صاحب موجود ہیں. جی بیرسٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے ان حملوں کے بارے میں؟
جی, جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا فرمانا ہے کہ ظلم کی تو انتہا ہو چکی ہے اور ابھی نہیں ہے, اس سے پیشر بھی ظلم و وحشت اور بربریت اتنے وسیع پیمانے پر یہ اسرائیل کر چکا ہے کہ زبان قاصر ہے اس کے بیان سے. और ये सिलसिला जो है 1948 से जब से ये बना है ये सिलसिला जारी है, और आए दिन जुल्म व तशद्दुद जो है और बर्बरियत ये बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये इनका तीन नौजवानों का कत्ल जो यकीनन अफसोसनाक है, किसी ने भी किया हो तो उसका बहाना बनाकर और उस जिस वहशतनाक तरीके से उस बच्चे को मारा और उसको ज़िंदा जलाया, अब तो खुद रिपोर्ट आ गई है और उन पर वो खुद भी शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहे हैं वो, लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू हैं नेतन्याहू साहब और वहाँ के सदर, क्योंकि लोगों को पता चल गया है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं और इस किस्म की बात है और लोगों को बख्शेंगे नहीं। छः आदमियों ने एतराफ़ भी कर लिया है जुर्म का, उसमें से कहते हैं तीन बच्चे हैं और तीन जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं की जा रही ताकि उनके ख़ानदानों पर हमला वगैरह ना हो सके, लेकिन ये तो हर सूरत में अपने लोगों को बचाएंगे। लेकिन किसी भी लिहाज से ये कहना कि ये जुल्म और बर्बरियत और जो तशद्दुद जो है ये किसी तरह भी जायज़ और रवा नहीं है। अब वो जिस तरह जिस बहीमियत के साथ उस बच्चे को जलाया गया है और उसके कज़न को बुरी तरह मारा पीटा, जिसकी तस्वीर सारी दुनिया ने देखी कि खुद उनके फौजी मार रहे हैं, तो उसके नतीजे में अगर गुस्से में आकर इश्तियाल में आकर बेचारे ये निहत्ते फलस्तीनी जो हैं वो कोई पत्थर फेंक दें या छोटी मोटी कोई हरकत कर लें, तो उसके नतीजे में वो तोप और तफंग और जहाज़ और उसमें वो तमाम लेकर आप चढ़ दौड़ें और बेगुनाहों को खेतों में खलियानों में बाज़ारों में और घरों में तबाह कर दें, तो ये कहाँ की इंसानियत है। और फिर वो कहते हैं कि हम जमहूरियत हैं, तो अगर ये जमहूरियत है तो ऐसी जमहूरियत पर तो सारी दुनिया को लानत ही भेजनी चाहिए और भेजना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहते हैं जुर्म ज़यीफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, तो जो कमज़ोरी है सबसे पहले वो दूर की जाए फ़लस्तीनियों में। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि हो जिसके दिल में सदाकत के लिए मरने की तमन्ना, वो पहले अपने जिस्म खाकी में जहाँ पैदा करे। तो पहले जो फ़लस्तीनी लोग हैं, मुसलमान हैं और जो उनके हमदर्द हैं, उनको चाहिए कि वो यकजा हों। सबसे बड़ा हथियार जो मुसलमानों के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो लेकिन बिलखसूस मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा हथियार जो इस जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ और इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ है, वो है इत्तेहाद। तो हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो हमें अपने नातवान जिस्म में जान पैदा करने के लिए, इस बहुत मजबूत दुश्मन का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद पैदा करना होगा। अब वो उन्होंने एक कदम उठाया है, हमास को साथ मिलाकर हुकूमत बनाई है, तो वो उनको जो है ना हजम नहीं हो रही इसराइल को, और ये सारा चक्कर उसी के नतीजे में है कि जी क्योंकि हमास हुकूमत में शामिल हो गई है और हमको वो उनकी शक्लें पसंद नहीं हैं और उनकी शमूलियत पसंद नहीं है, तो लिहाजा उनको सफ़े हस्ती से तहस नहस कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ है इसके लिए सिर्फ फ़लस्तीनी कुछ नहीं कर सकेंगे, इसके लिए पूरे आलम इस्लाम को, जैसे कि राशिद साहब ने फरमाया कि पूरे आलम इस्लाम को खड़ा होना पड़ेगा, OIC को खड़ा होना पड़ेगा, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, और वहाँ जो झगड़े चल रहे हैं जैसे शाम वगैरह में है उसको ख़त्म करके सारी तवज्जो इस तरफ लानी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है इत्तेहाद के अलावा वो हमारा मीडिया पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कितना स्ट्रॉन्ग मीडिया हो जो दुनिया को इनका असल चेहरा दिखा सके, कितना मकरूह चेहरा है और कितना जुल्म व तशद्दुद की इंतहा हो गई है कि वो जानवरों को भी इस बेदर्दी से नहीं मारा जाता, बल्कि मगरिब में तो जानवरों की भी जो कदर मंजिलत है और उनके साथ जिस शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आया जाता है, वो तो ये नहीं समझते कि शायद ये फ़लस्तीनी जो हैं ये वो दर्जा भी रखते हैं। तो इसलिए जितना भी ज़्यादा शदीद से शदीद अल्फाज में इन इन इनकी मजम्मत की जाए वो कम है, और मेरे ख्याल में तो जितना भी आलम इस्लाम है एक आवाज़ हो के इस वक्त करे, वरना जो फरमा रहे थे कि वो इंतफादा एक और दो की जगह अब शायद तीसरा भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इंतफादा मुजाहमत तो जारी है काफ़ी अरसे से, वो तीसरा शुरू भी कर दें तो उसका नतीजा क्या है जब तक हम इत्तेहाद हम में पैदा नहीं होता, हम मिलजुल कर इस मेहनत का मुकाबला नहीं करते, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है, दुआ है कि हमारे ज़मीर को अल्लाह ताला झंझोड़े और फिर हम इस काबिल हों कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ जेलों की बात फरमा रहे थे डॉक्टर साहब, पूरा फ़लस्तीन एक बहुत बड़ी जेल है जहाँ के हालत ज़ार जो है, क्योंकि वह दूसरों की निगाहों से छुपी हुई है, वहाँ जो जुल्म तशद्दुद होता है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे उन भाइयों पर क्या गुजर रही है और किस तरह गुजर रही है। जैसे उस बच्चे का चेहरा देखकर कोई भी देख सकता है कि 14-15 साल का बच्चा, जो हालांकि वो अमेरिकन नेशनल भी है, उसको इस बुरी तरह से मारा है कि वो पूरी तरह चेहरा और उसकी आंखें सूज गई हैं और एक को तो जिंदा जला दिया गया। तो आज के ज़माने में सिर्फ मारना ही जो है बहुत बड़ी बात होती है, आप जिंदा जला दें तो इससे बढ़कर बर्बरियत और कोई नहीं हो सकती। तो उस पर सवाए अफसोस के और इन पर लानत भेजने के और क्या किया जा सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अब्बास साहब। बैन अल-अक़वामी अदारे, आलमी तंजीमें, इंसानी हकूक़ के अदारे, आलमी बरादरी, इनका किरदार तो हमारे सामने है। इन्होंने कभी हक़ का साथ नहीं दिया है, हक़ को हक़ मानने से इनकार किया है इन्होंने। ये आलमी साम्राज्य के की मुआवनत के इदारे हैं दरअसल, बजाय इसके कि अक़वाम आलम का साथ दें। सवाल पैदा होता है उम्मत इस्लामिया का, उम्मत इस्लामिया क्यों खामोश है, इस्लामी दुनिया क्यों खामोश है, ख़ास तौर पर ये जो फ़लस्तीन के पड़ोसी जो अरब ममालिक हैं, जो गैरत अरबी का स्लोगन आए दिन उनकी तरफ से सुना जाता है, तो इनकी गैरत अरबी को क्या हुआ है कि फ़लस्तीनी मुसलमान भी हैं और अरब भी हैं।
देखिए, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि इसराइल को वजूद देने के साथ साथ एक प्लान किया गया था कि इसके जो इर्द गिर्द ममालिक हैं वहाँ पर कैसी हुकूमतें होंगी, कैसे लोग आएंगे, कैसे टाउट लेके आएंगे कि जो बाद में इस इसराइल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि उम्मत मुसलमान यानी हुकूमतों के अंदर जो इस्लामी हुकूमतें हैं, अवाम में फ़लस्तीन से बेपनाह मोहब्बत है, अवाम फ़लस्तीनियों को पसंद करती है, उस तहरीक का साथ देना चाहती है, उस काज को कबूल करती है, लेकिन इस खित्ते में बिलखसूस इसराइल के इर्द गिर्द जितने इस्लामी ममालिक हैं या आप जैसे आपने इशारा किया है अरब ममालिक हैं, वो तो बिके हुए लोग हैं, वो तो अमेरिका से और सियोनी लाबी से गोया एक कर्ज लेके हुकूमत चला रहे हैं, और वो कर्ज क्या है कि आपने इसराइल की हिमायत करनी है। आप इन ममालिक को देखें, सऊदी अरब टॉप पे है, कतर इसमें सामने है, और भी इसके साथ जो छोटे मोटे जितने मुल्क हैं, इन सब की सूरत हाल आप देखें, इनके बादशाहों, इनके सिस्टम को देखें, इन अफराद को देखें जो हाकिम हैं उनको देखें कि आज तक उन्होंने इसराइल के लिए क्या किया है। हत्ता OIC जैसा, जिसे हम कहते हैं बड़ी, अब तो एक बेज़र्र किस्म का इदारा बन गया है ना, जो बनाया ही इसी काम के लिए गया था, लेकिन अब उसके अंदर फ़लस्तीन का इशू शायद सबसे आखिर में चला गया या है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है उसका, अगर होता भी हो तो एक करारदाद की सूरत में, एक ऐसी कमज़ोर सी एक करारदाद पास करके वो अपना जो है वो मामला क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो असल ज़िम्मेदारी अब भी यही है, मैं आज करता चलूँ कि हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है, ये हुक्मरान टाउट हैं, अमरीका के सियोनी लॉबी के टाउट हैं, यही इनको लेके आए हैं, यही वो लोग हैं कि जो जिन्होंने आके इनको बसाया है, इनको सिस्टम भी इन्होंने बना के दिया है। इनको अब आप देखें, यानी सऊदी अरब इस वक्त दुनिया में असला ख़रीदने के उनवान से आप देखें कि दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे चला गया है, एक छोटा सा मुल्क जिसको किस से ख़तरा है कि वो इतना बड़ा असला इकट्ठा कर रहा है, और आप पूरे रिकॉर्ड उठा के देख लें, कभी एक गोली भी इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, इतना बड़ा असला जो उनके पास मौजूद है, ये इन्होंने इस्लाम के अंदर फितना पैदा करने के लिए, दहशत गर्दों की परवरिश करने के लिए, दाएश और अलनुसरा और अलकायदा और इस तरह के ग्रुपों को मजबूत करने के लिए ये असला रखा हुआ है, ये सब कुछ उन्होंने, ये वसाइल, ये पैसा, ये पेट्रो डॉलर, ये सारे उधर जा रहे हैं, लेकिन इसराइल के मसले में फ़लस्तीन की हिमायत में आप देखें आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। लिहाजा इन बादशाहों से, ये जो किंग हैं, ये जो हुकूमतें हैं, इनसे तो आप कोई तवक्को ना रखें कि ये आइंदा भी कोई इसराइल के ख़िलाफ़ और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कर सकेंगे, लेकिन अवाम के अंदर इस वक्त एक जज्बा है, जोश है, अब इसमें थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है। जैसे ख़ुद अब मसलन बिल आखिर फ़लस्तीन के अंदर जैसे तैसे भी हुआ अलफतह और हमास आपस में करीब आना शुरू हो गए हैं, अगरचे जो ख़ुद अलफतह के जो सदर हैं उनके बारे में, ख़ुद महमूद के बारे में बहुत सारे तहफ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन अवाम के दबाव की वजह से और मुसलसल नाइंसाफियों और वादा खिलाफियों के बाद बिल आखिर महमूद को भी ये एहसास होना शुरू हो गया है कि ये रास्ता नहीं है, अगर अपनी बका भी चाहिए तब भी ये रास्ता नहीं है, और अगर फ़लस्तीन को अगर वो आज़ाद कराना चाहते हैं तो वो तो ये रास्ता ही नहीं है, लिहाजा वहाँ पे एक इतिहाद की सूरत बनना शुरू हो गई है, और हमास और फतह जब जितने करीब आ जाएंगे एक महाज बनेगा तो इसके यकीनन इसके असरात मुरतब होंगे। अब आप फ़लस्तीन से सौरभ थोड़ा सा बाहर निकलें, जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उन ममालिक के अंदर भी ये तहरीक अपना असर पैदा कर चुकी है, اب اس کو مثلا حزب اللہ نے کس انداز سے خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو اٹھایا, اور حزب اللہ کے سربراہ جو ہیں سید حسن اس وقت عرب دنیا کے محبوب ترین لیڈر بن گئے, صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے فلسطین کے ایشو کو واقعاً جسے کہتے ہیں کہ پوری دیانتداری سے اٹھایا اور اس کو پورا پرسو کیا کہ مسائل کہاں پہ ہیں, مشکلات کہاں پہ ہیں, قربانیاں دی ہیں, کئی روزہ جنگ کے مشکلات برداشت کیے ہیں, لیکن اس ایشو کو نہیں چھوڑا. اب یہ ارد گرد کی جتنی ہماری اسلامی تحریکیں بنتی ہیں جو مختلف ممالک میں چل رہی ہیں, جو حکومتوں سے ہٹ کے ہیں, ان کا اس کو کوئی تعلق بھی نہیں بنتا, ان اسلامی تحریکوں کو میدان میں آنا پڑے گا, ان کو اس انداز سے اپنی قوم کو آگے لے کے آنا پڑے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ یہ موضوع جو ہے وہ خطے سے نکل کے پوری اسلامی دنیا کے اندر امت مسلمہ کا یہ بن جائے گا. دیکھیں امام خمینی نے کتنا عرصہ پہلے, یعنی امام خمینی کی آپ دور اندیشی دیکھیں کہ 1979, بلکہ امام کی بعض تقاریر تو 1979 سے پہلے کی ملتی ہیں کہ جو فلسطین کے موضوع پہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے, مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے. اس دعوت کے نتیجے میں آپ یوم القدس کی صورت میں ایک عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس کے بہت اچھے اثرات ہیں. تو یہی ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے, وہ جو امام کی فکر تھی, جو اس کو اب رہبر بھی آپ دیکھیں, رہبر کی اب ہر تقریب میں رہبر معظم جتنی اسلامی بیداری کو عنوان سے انہوں نے گفتگو کی ہے, جب بھی انسانیت کی بنیاد پہ بات کی ہے, جب بھی انسانی حقوق کی بات کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کا ایشو سب پہ ٹاپ پہ ہے, ان کی پرائیورٹی بھی ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ فلسطین ہے. اب دنیا کے اندر جتنی اسلامی تحریکیں ہیں, جتنے مختلف مذاہب کی قیادتیں اگر ہم کہوں, مختلف مسالک کی فرقوں کی, جو سب اس پہ متفق ہیں کہ قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت ایک غاصب حکومت کے پاس ہے, اور وہ نہ صرف اس کے پاس ہے بلکہ اس علاقے میں, اس ملک میں, اس خطے میں رہنے والے باشندوں پہ بھی کس انداز سے ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ایک طرف یہ تحریک چل رہی ہے, ایک طرف یہ مزاحمت کی ریزسٹنس کی بات چل رہی ہے, دوسری طرف اسی ریزسٹنس کے راستے میں خود مسلمانوں کی شکلیں تبدیل کر کے اسلام کے روپ میں ایسے گروپ لائے جا رہے ہیں, جیسے اب داعش کی مثال ہے. اب داعش ادھر دیکھیں, داعش اپنے ظلم و ستم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے, اور عین اسی وقت اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کے, یعنی دونوں کو آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے پلان کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں ہم نے اس طرف ظلم کرنا ہے, تم نے اس طرف ظلم کرنا ہے, آپ نے خطے کو. دیکھیں میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موضوع آپ صرف اس کو ایک فلسطین تک محدود نہ سمجھا کریں, یہ ہمیشہ وہی مسئلہ ہے جو گریٹر اسرائیل کا مسئلہ ہے, یہ وہی نیو ورلڈ اور نیو مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے, اس کے تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب لہٰذا جب اس کو ورلڈ لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں, خطے کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں, مسلم دنیا کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں, تو ذمہ داری بھی اس عنوان سے بنتی ہے کہ مسلم تحریکیں آئیں آگے بڑھیں, بجائے یہ کہ آپس کے اختلافات میں. امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک محفوظ ترین ملک میں تبدیل کر دے. اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک جن کے اندر ریزسٹنس ہے, جن ممالک کی حکومتوں کے اندر جو اس ریزسٹنس میں شامل ہیں, ان کے اندر مشکلات پیدا کریں, ان کے اندر بحران پیدا کریں. آپ دیکھیں شام کے اندر بحران پیدا کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ریزسٹنس بلاک کا سب سے اہم ایک رکن تھا. اب دوسرا دیکھیں, اس میں عراق شامل تھا, عراق کو انہوں نے کس انداز سے کیا, لبنان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے تاکہ حزب اللہ کو بدنام کر دیا جائے کہ یہ تو ایک مسلک کی جماعت ہے, جبکہ حزب اللہ کا کبھی اس طرح, اور یہ سارا دائرہ جو ہے پھر وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بھی بنتا ہے. یہ جو چار پانچ بڑی قوتیں جو اس وقت اسلامی ریزسٹنس بلاک میں شامل تھیں کہ ان کو کسی انداز سے کمزور کیا جائے, اور ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسلامی تحریک آگے بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اسلام کے نام پہ ہی مختلف گروپوں کو سامنے لایا جا رہا ہے, اور اسلام کی مقدس چیزوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, یعنی اس کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے. پہلے جہاد کے نام پہ اس کو وہ کیا ہے, اب خلافت کے نام پہ ایک اور ایشو کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, تاکہ مسلمان یوتھ کے اندر اگر اسلام کے عنوان سے ایک شوق اور جذبہ اور ایک عالمی اس کے عالمگیریت کے عنوان سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اس کو شروع میں ایک ایسے منفی چیزیں دے دی جائیں کہ وہ جو ایک سفر اس نے طے کیا ہے, وہ سفر کے جو امام خمینی کی تعلیمات کی روشنی میں تھا, وہ سفر جو خود رہبر معظم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے, وہ جو سید حسن نصر اللہ کے بیانات کی روشنی میں جو آگے سفر چل رہا تھا, کہ اس سفر کو کہیں پہ یہ راستے میں روک دیں اور اس کے لیے یہ مسائل پیدا کر لیں. ملکوں کو تقسیم کی بات چل رہی ہے, سنی شیعہ اختلافات کی بات چل رہی ہے, اور یہ خلافت اور نام نیاد اس طرح کی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جس کا بنیادی مقصد پھر اسی طرف پلٹتا ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو مضبوط کر دیا جائے اور اس کے ارد گرد جتنی مزاحمتی فورسز ہیں ان کو کمزور اور ضعیف کر دیا جائے.
بہت بہت شکریہ. और अर्शी खान साहब से बताया गया है कि हमारा रابطہ बरकरार हो गया है। जी खान साहब, सलाम अर्ज़ करते हैं आपकी खिदमत में। अर्शी खान साहब
जी। वालेकुम अस्सलाम।
जी जनाब,
मेरी आवाज़ आ रही है
गज़ा
आपको?
पर सहयोनी हुकूमत ने
शराफत
चौतरफा
भाई,
हमले
मेरी
शुरू
आवाज़
कर
आ रही
दिए
है?
हैं और आलम इस्लाम के जो मौजूदा तनाजुर में जो सूरत हाल है इस वक्त खित्ते की, शाम की सूरत हाल, फिर इराक़ में दाइश का जो फितना खड़ा किया गया, इसके तनाजुर में अगर आप देखें तो ये जो सहयोनी हुकूमत की जारहियत का नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बारे में आपका तज़िया क्या है?
देखिए, मैं पहले कह रहा था
जी
कि इसराइल की जो पैदाइश है वो अगर देखें तो लॉफुल नहीं है। खुद उसकी
जी
पैदाइश ना, उसमें कोई कंसेंसस था, ना कोई कंसेंट था, ना उसमें यूनाइटेड नेशन की रजामंदी थी, ना अरबों की रजामंदी थी। तो आप अगर पैदाइश को देखें, ओरिजिन को देखें, तो वो वायलेंस के बेसिस पे और जबरन के बेसिस पे हुआ। और थ्रू आउट आप देखेंगे कि इसराइल ने जो भी इकदाम उठाए हैं वो उसमें वायलेंस है, उसमें ऑक्यूपेशन है, उसमें जो है कब्जा है। अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं गाजा में या वेस्ट बैंक में, ये बेसिकली 12 जून की बात है, और 12 जून से लेके 30 जून का एक दौर है, और 30 जून के बाद का एक दौर है। तो 12 जून को जो हुआ, जिसमें तीन बच्चों को किसी ने जो है किडनैप किया, और किसने किडनैप किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन बगैर सोचे समझे, बगैर तफ्तीश किए नेतन्याहू साहब ने ये कहा कि इसको हमास ने इनको किडनैप किया है, और फिर उनको एक वो कड़ा जवाब देंगे और हेवी प्राइस उनको चुकाना पड़ेगा। तो बगैर तो इसमें एक बड़ी साजिश नज़र आती है। आप जानते हैं कि 1954 में माइकल कार्पिन की किताब है कि बॉम्ब इन द बेसमेंट, कि इसराइल ने कैसे एटम बॉम्ब बनाया। तो उसमें 1954 में वो इसराइली राइटर है कि वो कार्पिन, वो खुद लिखता है कि 1954 में इसराइली फौज का एक फौज के एक के हाथ को काट दिया गया, और इल्ज़ाम ये लगाया कि फ़लस्तीनियों ने किया है, हालांकि वो फ़लस्तीनियों ने नहीं किया था। वही सेम सिचुएशन अभी ये हुई है, किसी को नहीं पता कि उन बच्चों को किसने पकड़ा 12 जून को, और 30 जून को उनकी लाश मिलती है, और 30 जून के बाद जैसे ही उनका बरियल होता है, वैसे ही वहाँ पे जो सेटलर्स हैं वो शाउटिंग करते हैं, चैंटिंग मतलब शाउटिंग कर रहे हैं डेथ टू अरब, और उसके बाद वायलेंस शुरू होता है। और एक 30 जून तक हुआ यह है कि 12 जून से 30 जून तक इंटेंस क्रैक डाउन शुरू हुआ पूरे आपके वेस्ट बैंक में खास करके, और जिसमें काफ़ी लोगों को, मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन का अगर आप डेटा देखें एक हफ्ता पहले का, तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि 10 लोग उस वक्त तक मारे जा चुके थे, जबकि अभी जो डेटा है वो कल का 9 लोगों का मारे जाना, 10 में 9 और जोड़ दीजिए 19, और आज 11 लोगों को जोड़ लीजिए। यूनाइटेड नेशन का डेटा ये भी है आपके एक हफ्ते पहले का, जो कि इकोनॉमिस्ट ने छापा है कि 530 लोग उस वक्त गिरफ्तार हुए थे। मैं ये कह रहा था कि 12 जून के बाद 30 जून तक इंटेंस फेज ऑफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें लोगों को पकड़ना, उनको जेल में भर्ती करना, उनको मारपीट करना, मतलब ग्राउंड पे उन पे काम किया गया, ग्राउंड पे उनको तहस नहस किया गया। और 30 जून के बाद आपके एयर बॉम्बिंग शुरू होती है, हालांकि 30 जून के पहले भी एयर बॉम्बिंग शुरू हुई थी आपके 23 को, इसलिए 23 को भी, 23 जून को भी करीब 4 लोग मारे गए इस फलस्तीनियों के। तो 1 जुलाई के बाद मुसलसल वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, और ख़ास करके बहुत सारे ठिकानों को, सिविलियन टारगेट्स को, हमास के टारगेट को निशाना बनाया गया, और यहाँ तक कि जो डेयरी थी आपके गजा में जहाँ पे 100 लोग एम्प्लॉयड थे, उस डेयरी को, जो दूध की जो डेयरी थी उसको जो है बॉम्ब किया गया, और तमाम वहाँ पे नाकाबंदी हुई। जो हेब्रॉन के लोग थे करीब 23,000 लोग, उनकी पूरी तरह से नाकाबंदी हुई, इसलिए कि वहीं पे जो है बच्चे को, इसराइली जो यूथ था, सेटलर यूथ, उसको पकड़ा गया था। तो हेब्रॉन के लोग बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, बाहर के शहरों में नहीं जा सकते हैं, बाहर के मुल्कों में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा ये हुआ कि 12 जून के बाद मुसलसल लोगों को ट्रैम में और आपके शॉप्स में, रेस्टोरेंट में तंग करना, उनके साथ मारपीट करना, ये फेस चलता रहा। लेकिन 1 जुलाई के बाद बहुत ही तेज़ी आई, और उसमें बॉम्बर एयरक्राफ्ट इन्होंने इस्तेमाल किया, और मेरे ख्याल से इनका जो मेन मकसद है वो सबसे पहला मकसद ये है कि जो यूनिटी गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी, आप जानते हैं कि केरी पीस प्लान वो फेल कर गया वहाँ पे, और मुसलसल वहाँ पे एक्सपेंशन जारी है इलीगल सेटलमेंट का, इसलिए कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं जिसमें करीब 4 लाख से बल्कि 5 लाख यहूदी आबाद कर दिए गए हैं, तो वो बिल्कुल इलीगल है। यूरोपियन यूनियन ने भी सेटलमेंट को इलीगल कहा है। जो वहाँ पे वॉल क्रिएट किए गए हैं इजरायली वॉल, वो भी इलीगल है। उसको खुद जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इलीगल कहा है। तो वो जो बच्चे थे तीनों, वो इलीगल सेटलर्स के बच्चे थे, और उसका हमास ने क्लेम नहीं किया कि उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा है, लेकिन उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो वहाँ पे अभी जो तशद्दुद है वो इल्लीगल सेटलर्स कर रहे हैं, और इसके अलावा वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। मेन मकसद उनका ये था कि अभी इस पैलेस्टीनियन में यूनिटी आई थी, यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी आपके 2 महीने पहले, और 1 जुलाई को, इसी 1 जुलाई को जो गुजर गया, ये आपके पार्लियामेंट का पहला इजलास होने वाला था जो नहीं हो सका। ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को किसी तरह से नहीं वजूद में लाने देना था, और दोनों में अगर इत्तेहाद हो जाता है, अबू माजिन महमूद अब्बास में और इस्माइल हानिया में, तो मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी प्रेशर ला सकते थे इसराइल के ऊपर में। तो बेसिक मकसद इसका ये था कि इस तरह की चीज़ को कर करके वहाँ की यूनिटी गवर्नमेंट को तहस नहस किया जाए, नंबर एक। नंबर दो मकसद ये था कि जो अब्बास साहब की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही थी उसको भी ख़त्म किया जाए। तीसरा जो फैक्टर यह है कि जो हमास से वहाँ पे अपने आप को किसी तरह से सर्वाइव करना, अपने आप को चलाना, इसलिए कि हमास के बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने काम करना बंद कर दिया बॉम्बिंग की वजह से, तो इस्माइल हानिया को काफ़ी कमज़ोर करना था और हमास को भी काफ़ी कमज़ोर करना था। तो एक तीर से कई निशाने वहाँ पर किए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मकसद आपके इसराइल ने अचीव किया कि वहाँ पर जो डोमेस्टिक यूनिटी उनको चाहिए थी, इसराइलियों में काफ़ी एकता खास करके इसराइली हुकूमत के पीछे, वो उनके पास से नजर आया। और जब 3 बच्चे अगवा किए गए तो काफ़ी इंटरनेशनल सपोर्ट मिला आपकी इसराइल की हुकूमत को कि ये बहुत गलत हुआ, सारा कुछ हुआ। लेकिन जैसा कि हम आपके दो पहले जो स्पीकर हैं आपके राशिद साहब ने भी कहा कि अब जो वहाँ पे ये हंगामा कर रहे हैं और बॉम्बिंग कर रहे हैं, इस पर वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल खामोश हैं, बहुत ज़्यादा वो कुछ एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका मकसद था, और मैं ये समझता हूँ कि इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया। जहाँ तक तीसरे आपके इंतफादा की बात है, आप जानते हैं कि पहला इंतफादा 1987 में हुआ, और दूसरा इंतफादा जो है वो 28 सितंबर सन 2000 में शुरू हुआ, और वो भी शुरू हुआ था उस वक्त जब यासिर अराफात ये कह रहे थे कि 1 साल गुजर चुका और अभी तक फिलिस्तीन स्टेट वजूद में नहीं आया, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू ओस्लो मैड्रिड एग्रीमेंट 1999 तक पैलेस्टाइन स्टेट को वजूद में आ जाना चाहिए था। तो काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे यासिर अराफात, लेकिन इन्होंने उस वक्त जो है आपके यहूद एक प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शरोन साहब, वो उन्होंने वहाँ पे जाके तशद्दुद फैलाया, और उस वक्त 28 सितंबर से जो है सेकंड इंतफादा शुरू हुआ। मैं ये समझता हूँ कि थर्ड इंतफादा में भी ये शुरू हो सकता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइली को होगा, इसलिए कि इसराइल के पास मौका ये होगा कि जहाँ तक हो सके वो अपने तशद्दुद का इस्तेमाल कर सकें, फोर्स का इस्तेमाल कर सकें, और जो भी बची खुची ताकत है आपके पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के पास और इस्माइल हानिया के पास, उसको वो ख़त्म कर दें ताकि पूरी तरह से वो अपने काम को वहाँ पर चला सकें। आप जानते हैं कि 12 जून 2014 के बाद जब से ये बच्चे वहाँ पर पकड़े गए, और उसके बाद वहाँ पर मुसलसल जुल्म शुरू हुआ इसराइलियों का, वो बिल्कुल पर्दे पर नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि ISIS का वहाँ पे काफ़ी कवरेज चल रहा था और उसे काफ़ी उनको कवरेज मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी ट्रेजिक सिचुएशन है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और इसको बहुत ही केयरफुली और डिटर्मिनेशन के साथ इसको सॉल्व करना चाहिए, और जब तक कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जाए, चाहे वो कोई भी उठाए, अमेरिका या यूनाइटेड नेशन या अरब लीग, तब तक के मैं ये समझता हूँ कि ये वहाँ पे मतलब कत्लेआम नहीं रुकेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद खान साहब। और नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और इसके बाद फिर प्रोग्राम जारी। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ सहयोनी हुकूमत की जारहीत के बारे में। वक्त हमारे पास कम रह गया है, चलते हैं लंदन स्टूडियो, बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब। यूसुफ अख्तर साहब, जनाब, ये जो सहूनी हुकूमत के हमले जो हो रहे हैं, इनका इराक़ में जारी दाइश के फितने से क्या ताल्लुक़ हो सकता है कि दाइश ने वहाँ पर कुछ शहरों पर कब्ज़ा किया, और ख़ास तौर पर मूसल में दाइश के सरगना अबू बकर अल बगदादी की खिलाफत का भी ऐलान कर दिया गया है। ये जो फितना इराक़ में है, इसका और गज़ा पर सहूनी हुकूमत के हमले का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? हमारे पास 3 मिनट का वक्त रह गया है।
जी, इसका ताल्लुक तो लगता है बड़ा गहरा कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक तो कुछ गहरा ही लगता है, क्योंकि जिस अंदाज में ये दाइश उभरी है और जिस जो उनका तरीक़ाकार है उससे लोगों में नफ़रत ज़्यादा पैदा हो रही है। मासूम लोगों को बुरी तरह मारा जा रहा है, खुदा मालूम कहाँ से हथियार मिल रहे हैं, कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है और कहाँ से ये हिसाब निकले हैं जिनका पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, अब ऑल ऑफ ए सडन उनको खलीफा भी करार दे दिया गया। तो लोग जो नौजवानों में दरअसल ये जो सलमान राशदी था उसकी किताब के बाद से तमाम आलम इस्लाम में जो मुसलमान नौजवान हैं उनमें इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बात उभरे हैं और वो ज़्यादा माइल हुए हैं इस तरफ से, तो उनको मुतनफ़िर
यूसुफ अख्तर
करने के
साहब, हमारे
लिए
पास एक
ये
मिनट का वक्त रह
जी
गया है, एक मिनट का वक्त रह गया है
जी
हमारे
जी
पास।
जी तो उनको मुतनफ़िर करने के लिए इस किस्म की तहरीकें उभारी गई हैं, पाकिस्तान में भी हो या वहाँ पर इराक में हो या किसी और जगह इस किस्म के, वो अपना नाइजेरिया में हो, तो वो बिल्कुल एक ही पैटर्न है। आप देखें वहाँ उठते हैं मासूमों को, बेगुनाहों को, औरतों को, बच्चों को वो मारते हैं बुरी तरह से। तो उसमें यह है कि आम मुसलमानों में और नौजवानों में ख़ास तौर पे नफ़रत फैला दी जाए मज़हब के बारे में, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये जो हमले हो रहे हैं इसका एक तरफ ये है कि देखिए जी हमारे इंतजार बच्चों को मारा, यानी गिव ए डॉग ए बैड नेम एंड हैंग इट। तो पहले वो बता रहे हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे 3 बच्चों को मार दिया गया, और ये मारने वाले जो हैं वो किसी और का नाम नहीं ले रहे, वो कोई भी हो सकता है, खुद भी मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इसराइल बनाया है तो एक अपने जहाज
बहुत
में
बहुत
5,000
शुक्रिया,
यहूदियों को गर्क़ाब खुद भी कर दिया था। तो ये जो
बहुत
है
बहुत
उनसे
शुक्रिया
कोई
बैरिस्टर
चीज़
साहब
बरीद नहीं है। तो
जी, बहुत बहुत
जी
शुक्रिया बैरिस्टर साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर रशीद खान के भी शुक्रगुजार हैं और राशिद साहब आपके भी। फ़लस्तीन और इस खत्ते में जारी जो फितने हैं इनके बारे में इंशाल्लाह हम आइंदा प्रोग्रामों में भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।